श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 10 उसका श्लोक नंबर 34 हम पढ़ रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ही हम कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि परम सत्य भौतिक अवधारणाओं की व्याख्या एवं कल्पना से परे है, मतलब हमारी बुद्धि से उनको नहीं जाना जा सकता। वे निश्चित ही सभी भौतिक चिंतन से परे है। यह निर्विशेषणम कहलाता है, मतलब निर्विशेषणम का बहुत ही सुंदर यहाँ पर अर्थ बताया। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं निर्विशेषणम को दिव्य गुणों से विहीन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है, कोई गुण नहीं है। निर्गुण या निर्विशेषणम का मतलब ये नहीं, बल्कि क्या है, निर्विशेषणम का अर्थ है गुण, सॉरी विशेषणम का अर्थ है गुण, जैसे हम बोलते हैं इसके अंदर ये विशेषण। लेकिन निर्विशेषणम निर के जुड़ने से निर्विशेषणम का अर्थ है भौतिक गुण या विविधताओं से रहित हो जाता है, मतलब उनके अंदर ये भौतिक गुण रजोगुण सत्वगुण तमोगुण ये नहीं है, लेकिन उनके अंदर दिव्य गुण है। इस निषेधात्मक पद में चार दिव्य गुण है। कौन से चार दिव्य गुण है? अप्रकट, दिव्य, शाश्वत तथा मन एवं वाणी से परे। ये चार गुण भगवान के अंदर हैं, मतलब वो हर किसी के सामने प्रकट नहीं रहते, वो दिव्य स्पिरिचुअल रहते हैं, वो सदैव हैं, शाश्वत हैं, चाहे संसार समाप्त हो जाए, सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, परंतु भगवान एज इट इज शाश्वत बने रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मन एवं वाणी से परे है। हम अपने मन वाणी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते, और यदि भगवान को समझना ही है तो केवल और केवल एक ही आधार है, भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के भगवान की आराधना, भगवान की उपासना। जब जीव करता है भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो जब भगवान की कृपा होती है से ही जाने जेहो देहो जनाए, जब भगवान स्वयं अपने सामने उनके प्रकट होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण नाम आदि न भवाते इंद्रियः। अतः श्री कृष्ण भगवान के नाम गुण आदि को हम इंद्रियों से नहीं समझ सकते, लेकिन सेवा मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव सुफ्योर्त्यदा। यदि हमारी सेवा से, हमारी आराधना से, हमारी उपासना से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो स्वयं एव सुफ्योर्त्यदा साक्षात उनकी इच्छा से वो हमारे सामने प्रकट होते हैं, सुफूर्त करते हैं अपने आप को। मन और वाणी से परे हैं, शब्दों की सीमा से परे का अर्थ है भौतिक बोध का निषेध, यानी हमारे पास वो शब्द ही नहीं कि हम भगवान को जिससे डिस्क्राइब किया जा सके। जब तक मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त नहीं होता, वह भगवान के दिव्य रूप को नहीं जान सकता। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान को समझने के लिए दिव्य पद को प्राप्त होना आवश्यक है, और यह दिव्य पद केवल शुद्ध भक्तों के संग से ही प्राप्त हो सकता है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आगे समझाते हुए कहते हैं, अमुनि भगवत रूपे मायाते शनु वर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः। अमुनि भगवत रूपे मायाते ह्यनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः। शब्दार्थ, अमुनि का मतलब होता है ये सब, भगवत रूपे यानी भगवान को, रूपे यानी रूपों में, माया यानी मेरे द्वारा, ते तुमको ही निश्चय अनुवर्तते क्रमशः वर्णन किए गए, ओबे दोनों भी यानी न यानी कभी नहीं, गृणंति यानी स्वीकार करता है, माया सृष्टि विपश्चिता, माया मतलब बाह्य, सृष्टि मतलब इस प्रकार से प्रकट होकर, विपश्चिता मतलब जानने वाला या विद्वान। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के इन स्वरूपों को स्वीकार नहीं करते। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्विशेषवादी भगवान को दो भिन्न विधियों से मानते हैं। एक और वे स्वरूप भगवान की पूजा, विश्व रूप भगवान की पूजा करते हैं, और दूसरी ओर वे भगवान की अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं। कौन से दो स्वरूप है? एक तो विश्व रूप, मतलब भगवान का एक बहुत ही विशाल स्वरूप है। वो समझते हैं कि भगवान ने जब पूरे संसार को प्रकट किया है तो डेफिनेटली भगवान कोई साधारण हमारे जैसा नहीं होना चाहिए, वो तो बहुत ही विशाल होना चाहिए। और वो भगवान के प्रत्येक हर एक चीज को, जैसे ये पाताल लोक भगवान के पैर हैं और जितने भी पहाड़ हैं वो भगवान की हड्डियां हैं, और ये इस तरह से प्रत्येक कण में भगवान के विश्व स्वरूप को वो ढूंढते, ये विश्व ही भगवान का स्वरूप है। और उसके साथ साथ दूसरी ओर वे भगवान के अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं कि भगवान के भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, अप्रकट है। तो सर्वेश्वरवादी तथा एकेश्वरवादी के सिद्धांत क्रमशः भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों के लिए व्यवहारिक है। एक तो सर्वेश्वरवादी यानी प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखते हैं, एकेश्वरवादी मतलब भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान अव्यक्त है, अप्रकट है, सूक्ष्म है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं सर्वेश्वरवादी और एकेश्वरवादी भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों के लिए व्यवहारित है, किंतु भगवत भक्त इन दोनों सिद्धांतों को स्वीकार अस्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इसका स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में 11.45 में हुआ है, जहाँ अर्जुन द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का अनुभव अंकित है। तो यहाँ जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के वास्तविक स्वरूप जिसको वो जानते हैं उसको ही प्रेम करते हैं, उसको ही स्वीकार करते हैं और उसको ही पूजते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 11.45 में अर्जुन ने भी उसी की संस्तुति की है, जिसमें अर्जुन कहते हैं अदृष्ट पूर्वज क्षमा अदृष्ट पूर्वं ऋषतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेवमेद शयदेवरूपं प्रसीद देवेश जगन निवास। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था, किंतु जब उसने उसे देखा तो उसकी उत्सुकता शांत हो गई, लेकिन वह एक शुद्ध भक्त के रूप में अपने लगाव के कारण भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। अदृष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम्। वो कहते हैं वह भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ, अतः उसने भगवान से अपना तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश। अभी मुझे क्या करो, अतः उसने भगवान से अपना चतुर्भुज नारायण रूप या कृष्ण रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह उसी से प्रसन्न हो सकता था। निसंदेह भगवान अपने को अनेक रूपों में प्रकट करने में परम शक्ति से पूर्ण है, किंतु भक्त जन तो भगवान के दाम त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिखाई पड़ने वाले रूप में रुचि रखते हैं। त्रिपाद विभूति धाम में भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप अथवा दो भुजाओं वाला रूप, किंतु भौतिक विश्व में उनका जो विश्व रूप प्रकट है उसमें अनेक भुजाएं होती हैं और अनेक आयाम होते हैं और सभी कुछ असीम आकार होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त वैकुंठ रूप में नारायण या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कभी कभी वे ही वैकुंठ रूप में इस भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं, और इसीलिए भक्तजन इनकी भी पूजा करते हैं। सामान्यतः भौतिक जगत में जो भौतिक रूप प्रकट होते हैं वह वैकुंठ लोक में नहीं पाए जाते। अतः शुद्ध भक्त जिन रूपों को नहीं मानते, इन रूपों को नहीं मानते, भक्तजन प्रारंभ से ही वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के शाश्वत रूपों को पूजते आ रहे हैं। अभक्त निर्विशेषवादी भगवान के भौतिक रूपों की कल्पना करते हैं और अंततः भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, किंतु भगवान के भक्त तो प्रारंभिक तथा मुक्ति के अवस्था इन दोनों ही स्थितियों में सदैव पूजा करने वाले हैं। शुद्ध भक्त की पूजा कभी नहीं रुकती, किंतु निर्विशेषवादी की पूजा ब्रह्म ज्योति में उसके लीन होने पर और मुक्ति मिलने पर रुक जाती है। इसीलिए शुद्ध भक्तों को विपश्चित अर्थात विद्वान कहा गया है, जिन्हें भगवान का पूरा पूरा ज्ञान होता है। श्री प्रभुपाद की तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से भगवान के उन स्वरूपों को, यानी जो निर्विशेषवादी हैं या जो भगवान के अव्यक्त स्वरूप को, कि कोई भगवान का स्वरूप नहीं उसको मानते हैं, वो भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भक्ति का एक ही मतलब है लविंग डिवोशनल सर्विस, कि प्रेम के साथ उसकी सेवा की जाए, जो ना तो किसी निर्विशेष की जा सकती है और ना ही किसी निराकार की जा सकती है। भक्ति और प्रेम तो केवल भगवान के साकार स्वरूप से किया जा सकता है, और भक्त जो है वो भक्ति भगवान की प्राप्ति से ज्यादा भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। उसकी इच्छा होती है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं, क्योंकि वो जानता है कि मैं केवल भगवान से प्रेम, और एक प्रेमी की तो ख्वाहिश ही यही होती है कि उसका प्रीतम उससे प्रसन्न हो, है ना। उसके बदले में वो कभी भगवान से ये नहीं कहता कि मुझे भी अपने धाम में बुलाओ या मुझे भी अपने अंदर लीन करो। बस भगवान से यही कहता, मुझे आप भले नरक में रखो, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवता भक्ति रवि अहेतु की चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ये अधिकार चाहिए कि मैं कंटिन्यूस आपसे प्रेम कर सकूं, प्रेम से आपकी सेवा कर सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं। तो उसके लिए ना तो कोई निराकार स्वरूप वैल्यू रखता है और ना ही कोई जो निर्विशेष स्वरूप है या जो विश्व रूप है वो उसके लिए वैल्यू। उसके लिए तो भगवान का द्विभुज जो उसको प्रेम के आदान प्रदान कर सके, जो उसको प्रेम के बदले में प्रेम दे सके, वो ही भगवत भक्त के लिए आराध्य है। आगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, श्लोक नंबर 36, सवाच्य वाचक दया भगवान ब्रह्म रूप दे नाम रूप क्रिया दत्ते सकर्मा कर्म कह पर सवाच्य वाचक दया भगवान ब्रह्म रूप देख नाम रूप क्रिया दत्ते सकर्मा कर्म कह पर। शब्दार्थ सवाच्य वाचकता, स मतलब वह, वाच्य मतलब अपने रूपों तथा कार्यों से, वाचकतया अपने दिव्य गुणों एवं परिवेश से भगवान भगवान ब्रह्म रूपदृक, ब्रह्म मना परम, रूपदृक मतलब दृश्य रूपों से ग्रहण करके, नाम रूप क्रिया, नाम मतलब नाम, रूप मना आकार, क्रिया मतलब लीलाएं, दत्ते मना स्वीकार करता है, सकर्म कार्य में संलग्न, अकर्म यानी अप्रभावित हुए बिना, परह दिव्यातीत, अनुवाद अपने दिव्य नाम गुण लीलाओं परिवेश तथा विभिन्न विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य गुणों में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्य कलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी के तो जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो श्री भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के लिए इस संसार में विविध रूप धारण करते हैं। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही सही जान सके और ये ना सोच बैठे कि वह भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित सांसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि भगवान इस संसार में बार बार आते हैं, लेकिन जब वो ऐसे कार्य करते हैं तो भी कम से कम मनुष्य को इतना जानना चाहिए कि भगवान जो है वो दिव्य है, भगवान की लीलाओं को सही सही जानना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए भगवान होकर वो ऐसा क्यों करते, भगवान होकर वो ऐसा क्यों करते। आजकल लोग भगवान की दिव्यता को नहीं समझते, इसलिए भगवान पर भी आरोप लगाना शुरू कर देते कि भगवान थे तो उन्होंने कपड़े चोरी क्यों किए, भगवान थे तो इतने सारे विवाह क्यों किए, भगवान थे तो जरासंध के युद्ध में वो भाग क्यों गए। वो यहाँ श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए कि भगवान की लीलाओं को सही सही जान सके और ये ना सोच बैठे कि वह भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित सांसारिक रूप धारण करके आए इस जगत में अवतरित होते हैं। भौतिक प्रकृति से गृहीत कोई भी रूप इस संसार के में किए गए प्रत्येक कार्य से अनुराग रखता है। जो बद्ध जीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उस पर भौतिक नियम लागू होते हैं, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्ध जीव जैसे होते हैं, किंतु वे अलौकिक होते हैं और बद्ध जीव के लिए असंभव होते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कार्य से सदैव अप्रभावित रहते हैं। जैसे यहाँ साफ साफ बताया गया, न वाच्यकता भगवान ब्रह्म रूप अधिक नाम रूप क्रिया दत्ते सकर्मा कर्म परम, कि वो भले ही कार्य करते हुए दिखते हैं लेकिन इन कार्यों से वो सदैव अप्रभावित रहते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता 4.14 में भगवान कहते हैं, ये स्वयं भगवान के शब्द हैं और भगवान अपने विषय में बताते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेस्पृह इतिमाम यो भी जानाति कर्म भीर न सबद्यते। कितना सुंदर भगवान और बहुत ही सरल उपाय बताते हैं कर्मों से बंधन से छूटने का। क्या करना है, सिर्फ इतना मानना है कि भगवान कभी ना तो उन कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा संपन्न करते हैं और ना ही उन्हें सत्काम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। वो केवल लीला करते हैं, वो इन कर्मों के द्वारा थोड़ी बंधते हैं कि भगवान ने चोरी की है तो उसकी बदले में अब उनको जेल में डालना पड़ेगा या भगवान ने माटी खाई है तो उनको, लेकिन भगवान की ये सब लीला होती है। और भगवान कहते हैं इतिमाम यो भी जानाती, जो ये जानते हैं कि ये सारे कार्य मुझे बांधने वाले नहीं है, तो कर्म भी न सबद्यते, वो भी कर्मों के बंधनों से छूट जाता है। भगवान धन बल यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग की विविध शक्तियों से परिपूर्ण हैं, अतः बद्ध जीव के समान उन्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यह बद्ध जीव जो है वो किस लिए परिश्रम करते हैं, इन्हीं छलेश्वरी को प्राप्त करने के लिए। देखा जाए तो संसार में जितने भी लोग हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, या तो धन प्राप्त करने के लिए, या तो शक्ति प्राप्त करने के लिए, या तो यश प्राप्त करने के लिए, सुंदरता प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये सब वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तो वो कार्य कर रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान के पास तो ये सब परिपूर्ण मात्रा में, अतः बद्ध जीव के समान उन्हें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्ध जीवों के कार्यों में भेद कर सकता है, वह भी कर्म फल से में नहीं बंधता है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में भगवान प्रकृति के त्रिगुणों का संचालन करने वाले हैं। ये तीन जो महादेव इनको कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, यही सृष्टि का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। ये भगवान के ही स्वरूप, भगवान के गुणा अवतार इनको कहा जाता है, प्रकृति के त्रिगुणों का संचालन करते हैं। विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश होते हैं, तो कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड भर की समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहायक के माध्यम से करते हैं। तो ये भगवान की अपनी इच्छा है, कभी वो स्वयं ब्रह्मा बन के आते हैं तो कभी अपने अंश से, लेकिन ब्रह्मा ही के द्वारा जो है वो संसार का सृजन कराते हैं, कभी वो स्वयं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड भर की समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहायक के माध्यम से करते हैं। और उसके बाद शुकदेव गोस्वामी बहुत सारी विभिन्न प्रकार की योनियों के विषय में बता रहे हैं कि जब संसार में जो दूसरे भगवान तो अपनी लीला करने के लिए आते हैं, लेकिन जितने भी बाकी प्राणी होते हैं वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर के द्वारा सृजित किए जाते हैं। और वो कैसे होते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है श्लोक नंबर 37 से लेकर 40 तक। प्रजापतिन मनुन देवान ऋषिन पितृ गणान पृथक सिद्धचार गणागण सिद्धचार गंधर्वान विद्याधरा सुर गुह्यकान किन्नराप्सरसो नागान सर्पान किं पुरुषान नरान मातिरक्षः पिशाचांश्च प्रीतभूत विनायकान कूष्मांडोन माधवीतालान यातु धानान ग्रहानपि खगान मृगान पशुन वृक्षान गिरी नृप सिरि श्रीपान द्विविधा चतुर्विधायेनि जलस्थल नभौकस कुशला कुशला मिश्रा कर्मणां गतयस्त्विमा। एक बार फिर से देखे। प्रजापतिं मनुं देवान ऋषिन पितृ गणान पृथक सिद्धचारण गंधर्वान विद्याधरा सुर गुह्यकान किन्नराप्सरसो नागान सर्पान किं पुरुषान नरान मातृरक्ष पिशांश्च प्रेतभूत विनायकान कूष्मांडोन माधवीतालान यातु धानान ग्रहानपि खगान मृगान पशुन वृक्षान गिरी नृप सरीसृपान द्विविधा चतुर्विधा येन जलस्थल नभौकस कुशला कुशला मिश्रा कर्मणां गतयस्त्विमा। अनुवाद देखिए। हे राजन मुझसे ये जान लो कि सभी जीव आत्माएं अपने विपद कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र वैवस्वत मनु जैसे साम्यक प्रधान इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भृगो व्यास विशिष्ट जैसे महर्षि पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर तथा देवदूत नाग बंदर जैसे किम पुरुष मनुष्य मातृलोक के वासी असुर पिशाच भूत प्रेत उन्मादी शुभ अशुभ नक्षत्र विनायक जंगली पक्षी जंगली पशु पक्षी घरेलू पशु सरीसृप पर्वत जड़ तथा चेतन जीव जरायुज अंडज स्वेदज तथा उद्विज
जीव तथा अन्य समस्त जल स्थल तथा आकाश के दुखी सुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीवित सम्मिलित हैं। ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस सूची में जीव आत्माओं की विविध किस्में बताई गई हैं। सर्वोच्च लोक से लेकर ब्रह्मांड के निम्नतम लोक के सारे जीवों की विभिन्न योनियां सर्वशक्तिमान पिता विष्णु द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 14.4 में निम्नलिखित श्लोक से सभी जीव आत्माओं को अपनी संतति कहा है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत्योनिर् अहं बीज प्रदप्रिता। प्रकृति की तुलना माता से की गई है। यद्यपि प्रत्येक जीव अपनी माँ से उत्पन्न होता देखा जाता है, किंतु सत्य तो यह है कि ऐसे जन्म का वास्तविक कारण माता नहीं है। जन्म का वास्तविक कारण पिता होता है। पिता के वीर्य के बिना शिशु को माता जन्म नहीं दे सकती। अतः असंख्य ब्रह्मांडों में विभिन्न योनियों तथा स्थितियों में सभी जीव शक्तिमान पिता परमेश्वर के बीज से उत्पन्न होते हैं। केवल अल्पज्ञानी ही उन्हें भौतिक प्रकृति से जन्मा हुआ मानते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं दिखने में ऐसा लगता है कि संसार से मतलब प्रकृति से जीव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन माता कभी पिता की सहायता के बगैर किसी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती। उसी तरह प्रकृति जो है वो परमेश्वर की सहायता के बगैर कभी भी कोई वस्तु को कोई जीव को प्रकट नहीं कर सकती। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो केवल बेवकूफ होते हैं जिन्हें भौतिक प्रकृति से जीवों को जन्म हो समझते हैं। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति से वशुभूत होकर ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करते हैं। तो जितने भी जीव हैं वो सब भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग, जो कि हमने अभी शरीर पढ़े उनके विषय में, तो वो अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं। भौतिक प्रकृति भगवान की शक्तियों में से एक है। श्रीमद् भगवद गीता 7.4 भौतिक प्रकृति पराप्रकृति अर्थात जीव आत्माओं की तुलना में निम्नतर होती है। भगवान बताते हैं भौतिक प्रकृति में क्या है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। मेरी शक्ति है, भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति है जिसमें ये सारी वस्तुएं। और उसके बाद कहते हैं अपरेयम इतस्त्वन्यम, ये मेरी अपरा प्रकृति है और प्रकृति विधि में परा मेरी परा प्रकृति भी है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिक प्रकृति परा प्रकृति अर्थात जीव आत्मा की तुलना में निम्नतर होती है। भगवान की परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति संयोग करके सारे सांसारिक व्यापारों को प्रकट करते हैं। परा प्रकृति मतलब ये सारे जो भूत हैं पंचभूत इत्यादि वो, और परा प्रकृति मतलब आत्मा। तो ये जब इन दोनों का मिलन होता है तो सब संसार का जो व्यवहार है व्यापार है वो स्टार्ट होता है। कुछ जीव आत्माएं अपेक्षतया सुखी हैं तो कुछ दुखमय स्थितियों में जीवन बिताती हैं, किंतु वास्तव में इनमें से कोई भी भौतिक बद्ध जीवन में सुखी नहीं होता। बंदी जीवन में कोई सुखी नहीं रहता, भले ही कोई प्रथम श्रेणी का कैदी हो या तृतीय श्रेणी का कैदी। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह तृतीय श्रेणी के बंदी जीव से प्रथम श्रेणी के बंध जीवन में उन्नत किए जाने की उपेक्षा बंदी ग्रह से ही मुक्त होने का प्रयत्न करें। किसी की प्रथम श्रेणी के कैदी में प्रोन्नति हो सकती है, किंतु अगली अवधि में उसे तृतीय श्रेणी में फिर जाना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बंदी जीवन से मुक्त होने और भगवान के धाम जाने का प्रयास करे। समस्त प्रकार के जीवों के लिए यही असली गंतव्य है। तो यहाँ पर बहुत सारी योनियों के विषय में बताया गया, और इतनी सारी योनियों में कुछ निम्न योनियां हैं, कुछ श्रेष्ठ योनियां हैं,
और उनमें भी कुछ सुखी हैं, कुछ दुखी हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात पे इस श्लोक का तात्पर्य समाप्त किया है कि भले कोई देवता भी बन जाए, लेकिन ये बद्ध जीवन है ना, कैद तो आखिर कैद है। चाहे आप फर्स्ट क्लास के कैदी हो या थर्ड क्लास के कैदी हो, थर्ड क्लास का कैदी यदि कोशिश करे 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 और उस कोशिश के परिणाम में उसको फर्स्ट क्लास का कैदी बना दिया जाए तो भी क्या लाभ है, है ना। उसी तरह से एक जीव यदि बहुत कोशिश करे और वो पशु से मनुष्य, मनुष्य से देवता भी बन जाए तो भी क्या लाभ है। आखिर तो वो कैद खाने में भी है ना, आखिर तो वो बंदी ही है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि किसी की प्रथम श्रेणी के कैदी में प्रोन्नति हो सकती है, किंतु अगली अवधि में उसे तृतीय श्रेणी में फिर जाना पड़ सकता है, है ना। आप मनुष्य से जानवर से मनुष्य, मनुष्य से देवता बन जाओ, लेकिन देवता से फिर भी कभी वृक्ष बन जाते हैं, है ना। वो नल की वेग और मणिग्रेव तो वृक्ष बन गए, जड़ योनि में आ गए, तो ये खतरा सदैव रहता है कि वापस से नीचे गिर सकते हैं। तो मनुष्य जब बनता है तो मनुष्य को श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चाहिए कि बंदी जीवन से मुक्त होने और भगवान के धाम जाने का प्रयास करें। एक समस्त प्रकार के जीवों के लिए यही असली गंतव्य है। हमारा वास्तविक गंतव्य यह है कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूटें, हम इस जेल से छूटें और भगवत धाम को प्राप्त करें। और इसी में ये मनुष्य जीवन की सफलता है कि हम भगवान को प्राप्त करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।